हेलो बच्चों, मेरा नाम प्राची है। मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ इग्नू से। आज हम इकोनॉमिक्स 10th क्लास का पढ़ेंगे, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें इस पूरे चैप्टर में हम मनी पैसे के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा कैसे आई, इसका क्या इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ, कैसे बनी इत्यादि। नाउ सबसे पहला हमारा भाग है मुद्रा, विनिमय का एक माध्यम। आज हमें कोई भी चीज खरीदनी हो, हम सीधा अपनी जेब से पैसे निकालेंगे, दुकानदार को देंगे और दुकानदार हमें वो सामान दे देगा। वो दुकानदार भी वो पैसे लेने को तैयार है, हम भी वो पैसे लेने को तैयार है। आज हम इन्हीं पैसों से ना जाने कितनी चीजें खरीद सकते हैं। जो चीज आप सोचोगे वो चीज हम इस मुद्रा से या इन पैसों से हम खरीद सकते हैं। कुछ केसेस में तो हम ऐसा भी करते हैं कि हम दुकानदार को बोल देते हैं, भैया अभी आप रख लो, अभी मुझे सामान दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको यहीं पे पास में रहता हूं, मैं अभी आके पकड़ा देता हूं, थोड़ी देर में पकड़ा दूंगा। फिर भी वो मान जाता है, वो पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई एक शू मैन्युफैक्चरर, मतलब कोई जूता बनाता है, उसको अपना जूता बेचकर कोई सामान खरीदना है, सिंपल है, वो जूता बना के जूता पैसे के लिए बेच देगा और वो पैसे लेकर वो अपनी जरूरत का कोई भी सामान खरीद सकता है। अब ये तो थी जब हमारे पास मुद्रा हो, लेकिन अगर अब ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए आप लोग कि अब आपके पास मुद्रा है ही नहीं, अब आपको चीजों के बदले ही बेचनी है। आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस चीज को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, या फिर इंग्लिश में हम इसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे बहुत पहले यूज होती थी। इसमें क्या करते थे, जो लोग थे वो वस्तु के बदले वस्तु ही आदान प्रदान करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक जूता विक्रेता है, जो जूता बना रहा है, उसको अगर गेहूं खरीदना है तो उसको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो ना केवल गेहूं उगाकर उसे बेचना चाहता हो, बल्कि उसे जूते की भी आवश्यकता हो, तभी वो दोनों आपस में सामान बदल पाएंगे। वरना सोचिए, अगर वो इंसान गेहूं तो बेचना चाहता है लेकिन जूता नहीं खरीदना चाहता, तो उस जूता विक्रेता को फिर ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा कि जो उस गेहूं वाले की इच्छा भी पूरा कर सके और उसको खुद को गेहूं भी मिल जाए। तो इसको करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती थी। तो इस चीज को हम बोलते हैं, क्योंकि अब ये जो चीज है, जो हमारा आदान प्रदान है, ये दोनों ही तरफ की पार्टी, दोनों ही तरफ के लोगों को पूरा नहीं हो रहा है, दोनों ही लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं है। मतलब कि जो जूता बनाने वाला है उसको गेहूं चाहिए, लेकिन जो गेहूं बनाने वाला है उसको भी जूता चाहिए होना चाहिए, तभी वो दोनों आपस में चीजों का आदान प्रदान कर पाएंगे। दोनों के दोहरा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा, मतलब दोनों ही उन चीजों को लेने के लिए तैयार होंगे। अब ये तो हुआ तब जब हमारे पास सिर्फ मुद्रा ना हो, लेकिन अगर हमारे पास इसी केस में अगर मुद्रा होती तो सोचिए हमारे लिए ये आदान प्रदान कितना आसान हो जाता। वो जो व्यक्ति था जो जूता बना रहा था, वो सीधा सीधा अपना जूता बेचता, उसको पैसे मिलते, उन पैसों से वो जाके अपना गेहूं खरीद सकता था। अब इसमें जो ये पैसा है, जो हमने ये पैसा यूज किया, इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। क्यों है? क्योंकि उस जूते वाले को भी पता है कि आज अगर मैं ये पैसा लूंगा तो ये पैसे से मैं चीज बेच भी सकता हूं, और फिर इस चीज से मैं आगे कोई चीज आगे और खरीद सकता हूँ। और जिस दुकानदार से उस जूते वाले ने गेहूं खरीदा होगा, वो गेहूं वाला भी वो पैसे ले लेगा। वो क्यों ले लेगा? उसे पता है कि आगे अगर उसको कुछ और चीज खरीदनी है तो उसको बस ये पैसा दिखाना है, पैसा देना है, और उसको वो जो भी उसको चीज खरीदनी है उसको मिल जाएगा। इससे जो हमारा आदान प्रदान है वो बहुत सरल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारी मुद्रा होती है वो हमारा एक विनिमय का माध्यम होता है। मतलब ये हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम उस मुद्रा को इस्तेमाल कर हम आगे की चीज को खरीद सके, हम विनिमय कर सके, हम आदान प्रदान कोई भी चीज खरीद भी सकते हैं, कोई भी चीज बेच भी सकते हैं। ये तो बात हुई कि जो हमारी मुद्रा है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है उसमें वो विनिमय का साधन होता है, दूसरा वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पूरा करता है। अब हमारा दूसरा भाग आता है कि अब ये जो मुद्रा है ये विकास कैसे हुई, क्या पहले से ही मुद्रा चली आ रही थी? इसका जवाब हमें पता है नहीं, क्योंकि सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई थी। तो फिर क्या हुआ, ऐसा कैसे हमारी हम इस मुद्रा तक आए? आज हम जो पैसे यूज करते हैं, जो नोट और कॉइन यूज करते हैं, वो हम कैसे उपयोग हुए, होना शुरू हुए, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने अभी पहले वाले भाग में पढ़ा कि हमने सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू किया। अब जैसे जैसे लोगों ने देखा, जो राजा महाराजा उस समय के थे, उन्होंने देखा कि इससे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है लोगों को, तो उन्होंने सोचा कि हम एक चीज फिक्स कर देते हैं कि इसी चीज को इस्तेमाल करके हम आदान प्रदान करेंगे। तो इस चीज के लिए उन्होंने गाय भी फिक्स करी, कुछ अनाज भी फिक्स किया, कोई पशु पक्षी भी फिक्स करे, अनाज भी फिक्स किया। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत ये थी कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम कितना ग्राम या कितनी गाय को कितने किलो के बराबर माने। मतलब अगर मैं एक गाय देती हूँ तो मुझे कितना किलो सामान मिलना चाहिए, मैं एक किलो अनाज देती हूँ तो मुझे कितना किलो का सामान मिलना चाहिए, तो इसमें दिक्कत आ रही थी। तो हमारे जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने फिर कॉइन्स बनाना शुरू करे। इसके बारे में आपने अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में जरूर पढ़ा है कि अलग अलग धातुओं की अलग अलग कॉइन बनना शुरू हुई, जैसे गोल्ड, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, इन सब की अलग अलग कॉइन्स बनने शुरू हुए और अलग अलग वैल्यू इनकी थी ताकि लोग इनको इस बाजार में जाकर इस्तेमाल कर सके। अब धीरे धीरे इन कॉइन्स को और अच्छा किया गया और हमारी करेंसी बनी। अब करेंसी क्या है, ये जो नोट हम यूज कर रहे हैं, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 200, 500 और 2000, ये जो नोट हम यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम करेंसी। ये हमारे कागज के नोट होते हैं और ये हमारे जो सिक्के होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। अब इनकी बहुत वैल्यू होती है क्योंकि जैसे हम भी मैंने आपको बोला कि ये हमारा एक विनिमय का माध्यम भी होता है और ये हमारा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी पूरा करता है। अब बात ये आती है कि जो ये आधुनिक मुद्रा है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं, कैसे ये उपयोग में आनी शुरू हुई, हमने इसे ही क्यों चुना अपना विनिमय का माध्यम। हमने इसे इसीलिए चुना क्योंकि जो हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, मतलब हमारी सरकार ने इसको नियमित किया है कि हमें यही करेंसी यूज करनी है ताकि हम अपनी चीजें खरीद सके और बेच सके। जिस तरीके से पहले के राजा महाराजाओं ने कोई पशु पक्षी अनाज या इन चीजों को नियमित किया था, उसी तरीके से अब हमारी जो सरकार है उन्होंने इस करेंसी को नियमित किया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो ये करेंसी है, ये हम जो करेंसी यूज करते हैं, ये क्या हर कोई प्रिंट कर सकता है? और अगर हर कोई कर सकता है तो कहाँ होती है ये प्रिंट? फिर उसके बाद ये हम इसे ही क्यों यूज करते हैं? हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये नोट नकली है, ये नोट असली है? हम ऐसे कैसे पहचान कर पाते हैं? इन सभी का जवाब अब मैं आपको देती हूँ। अब आप लोग के पास कोई नोट है तो उसको निकालिए। मेरे पास 10 रुपए का नोट है तो मैं 10 रुपए के नोट से पढ़ रही हूँ। अब आप एकदम नोट में सबसे आगे जहाँ पे गांधी जी बने हुए हैं उधर देखिए, ऊपर सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है ये बैंक सर्वोच्च बैंक है हमारे पूरे देश का। इसी बैंक के पास अधिकार है कि वो किसी भी वैल्यू का नोट या करेंसी बना सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारा सर्वोच्च बैंक है और केवल इसी बैंक के पास अधिकार है कि वो कोई भी तरह का नोट प्रिंट कर सकता है। ये जो बैंक है ये हमारे आम बैंकों की तरह नहीं होता। जैसे अगर हम अपने एरिया में जाए तो हमें दुनिया भर के बैंक मिलेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस तरीके की ये कुछ एग्जाम्पल है। ये जो बैंक है रिजर्व बैंक, ये सभी बैंकों का बैंक है। मतलब सभी बैंकों को देखना, उनकी प्रक्रिया को जानना, सारा काम वो रिजर्व बैंक ही करता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपके स्कूल में आप लोग बच्चे हैं, आप वही चीजें फॉलो करते हैं जो आपके टीचर्स आपको बोलती हैं। वो हुई हमारी बैंक, जो टीचर्स हुए वो हुए हमारे नॉर्मल बैंक। लेकिन टीचर्स भी तो किसी की एडवाइस या फिर किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। वो कौन होता है? वो होते हैं प्रिंसिपल। तो वो जो प्रिंसिपल हुआ वो हमारा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो टीचर्स हुई वो हमारी हुई नॉर्मल बैंक, और जो बच्चे हुए जो आप लोग हुए वो हो गए इन लो जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात माननी ही माननी है। अब ये जो रिजर्व बैंक है यही है जो नोट ये बनाता है। अब इसमें जो रिजर्व बैंक में काम करता है, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, इस नोट पे उस रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं। आप ये नीचे देखिए, इस पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, फिर नीचे गवर्नर के साइन है। इस लाइन की वजह से, इस गवर्नर की साइन की वजह से ये नोट असली है। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नर है ये वादा करता है कि ये जो पेपर का नोट है मेरे हाथ में 10 रुपए का, ये जिस भी व्यक्ति के पास ये नोट है ये उसे 10 रुपए प्रदान करेगा। इस वजह से ये जो नोट है पूरे इंडिया में ये मान्य है और हर एक व्यक्ति को इस नोट को स्वीकार करना ही होगा। यही रीजन है जो RBI है वो इस नोट को प्रोड्यूस करता है, नोट को बनाता है। कोई भी आम इंसान ये नोट नहीं छाप सकता या नोट नहीं बना सकता। हर एक इंसान को ये नोट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नोट को हमारा आधुनिक माध्यम बताया है कि हम इससे, इसके इस्तेमाल से कोई भी चीज खरीद सकते हैं और कोई भी चीज ले सकते हैं और कोई भी इंसान इसको लेने से मना नहीं करेगा। अब ये तो हुआ कि अब हम करेंसी यूज करते हैं, अब आगे हम आते हैं, ये जो बैंक है इन बैंकों का भी आजकल बहुत, हमारी मुद्रा से बहुत ज्यादा गहरा संबंध हो गया। अब जैसे आप अगर अपने मम्मी पापा से बात करेंगे तो उनकी जो भी सैलरी है, उनकी जो भी आय है वो उनको हाथ में नहीं मिलती है, वो डायरेक्ट कहाँ जमा होती है, उनके बैंकों में जमा होती है। जिस बैंक में उनका खाता होगा उस बैंक में वो पैसे जाके जमा हो जाएंगे। ये है हमारा अगला आधुनिक रूप पैसे का। पहले ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, फिर हमारे पशु पक्षी बने, फिर हमारी कॉइन्स आए, फिर करेंसी आई, और अब बैंकों में पैसे निक्षेप करने लगे। अब जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो उतने ही पैसे अपने हाथ में रखते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है, और जो बाकी के बचे हुए पैसे होते हैं वो बैंकों में निवेश कर देते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये जो बैंकों के में पैसे हम ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मम्मी पापा की जितनी भी सैलरी आई वो सारी की सारी आप उनके अकाउंट में जमा हो गई। उन्होंने जिस बैंक के साथ अपना अकाउंट बना रखा था उस बैंक में जाके वो उनकी जितनी भी राशि थी, जितनी भी रकम थी, वो उधर जमा हो गई। अब मैं उसमें अपना जितना भी अमाउंट है, मुझे जितनी भी जरूरत है, चाहे मुझे 5,000 रुपए की जरूरत हो, चाहे मुझे 10,000 रुपए की जरूरत हो, मैं अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी मांग के हिसाब से पैसे निकाल सकती हूँ। इसीलिए इस जमा राशि को हम मांग जमा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दोबारा समझिए कि मैं अपनी मांग के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक में से वो पैसे निकाल सकती हूँ। अब मैं इन बैंकों में से कैसे पैसे निकाल सकती हूँ? आपने अपने मम्मी पापा के पास जरूर चेकबुक जरूर देखी होगी। जो ये चेकबुक होती है ये हमें हमारी जो मांग जमा है इस खाते में से पैसे निकालने में, मुद्रा निकालने में बहुत सहायक प्रदान करती है। अब आप ये पेज नंबर 41 पे देखिए, इन्होंने एक चेकबुक की फोटो लगा रखी है। ये जो चेकबुक है ये भारतीय स्टेट बैंक की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मतलब ये जो हर एक बैंक की अपनी अपनी चेकबुक होती है, तो ये जो चेकबुक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। इधर देखिए, इधर डेट भी लिखा हुआ है, इधर हमें किसे पैसे देने उसका नाम आएगा, कितने रुपए देने वो लिखने हैं, नाम नंबर में भी और नाम में भी, फिर किसी का खाता नंबर, जो भी अकाउंट है वो अकाउंट नंबर होता है, फिर बैंक द्वारा प्रस्तुत कोड, वहां पे नीचे इनका कोड लिखा हुआ होता है, चेक का क्या नंबर है वो लिखा होता है, और इधर साइड में हमें साइन करने जरूरी होते हैं। हमें जितने पैसे हमें मांग जमा खाते से निकालने हैं हम उतने पैसे इस चेकबुक में भर देंगे। हम किसी भी बैंक में जहाँ पे हमारा खाता है और हमने जो चेक यूज किया है वो जाके उस बैंक में जमा करेंगे। वो बैंक वाला हमें उसमें जितने पैसे लिखा हुआ है, जिस इंसान के लिए लिखा हुआ है उस इंसान को उतने पैसे दे देगा। तो ये एक तरीके का सिर्फ एक ऐसा कागज है, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो चेक है वो एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ये पैसे मैं खुद भी निकाल सकती हूँ, ये पैसे मैं किसी और के अकाउंट में जमा भी करवा सकती हूँ, मुझे बस चेक काटकर उस पे जहाँ पे लिखा हुआ है उधर उस इंसान का नाम भरना है जिसको मुझे पैसे देने, और फिर ये चेक मुझे उस इंसान को पकड़ा देना है। अब वो इंसान अपने बैंक में जाएगा, ये चेक दिखाएगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। ये तो था हमारा दूसरे तरीके का, एक तरीके का हम कैसे बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जिससे हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं वो है हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, जो एटीएम हम यूज करते हैं। आपने जरूर अपने मम्मी पापा के पास देखा होगा एक प्लास्टिक का छोटा सा रेक्टेंगल का कार्ड, उसे बस मैं एटीएम मशीन्स जो होती हैं उधर जाऊंगी, उधर पंच करूंगी, जितने पैसे मुझे चाहिए हाथों हाथ मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसमें मुझे चेक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर ये गौर कीजिए कि हमारे जो पैसे हैं, जो मुद्रा है, वो कैसे कैसे विकसित हुई, कैसे कैसे बदली। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, फिर पशु पक्षी और अनाज फिक्स किया गया, फिर कॉइन्स आए, फिर करेंसी आई, फिर हमारे बैंक में ये चेक आए, अब एटीएम आ गया, एटीएम में हमारे जितने भी क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, ये सब चीजें आ गई। इधर बैंकों से जब हम पैसे निकालते हैं, इधर एक चीज देखने वाली ये बात है, चाहे हम चेक इस्तेमाल करें, चाहे हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, इधर हम बिना मुद्रा के काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी भी ऑफिस में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड दिखाऊंगी, वहां पे स्वाइप कर दूंगी या फिर वहां पर पैसे भुगतान कर दूंगी, तो बिना ही पैसे दिए हुए मेरे बैंक से उनके अकाउंट में, उस व्यापारी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एक हमारा आधुनिक अर्थव्यवस्था है जिससे हमें मुद्रा की समझ हो सकती है। जो अब आजकल नई प्रणाली इस्तेमाल में आई है वो आई है नेट बैंकिंग। आप में से कितने लोग नेट बैंकिंग के बारे में जानते हैं? जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं, ये जो नेट बैंकिंग है ये हम सीधा अपने इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। हम कहीं पे भी बैठे हैं या खड़े हैं, हमें अपने कार्ड की भी जरूरत नहीं है। हम सीधा अपने जिस बैंक अकाउंट में हमारा खाता है उधर जाएंगे, अपनी जो डिटेल्स उनको पहले से ही बैंक वाले प्रोवाइड करके रखते हैं वो डिटेल भरेंगे, और हमें जिधर जिसको पैसे भेजने हैं हम उसको घर बैठे ही आराम से पैसे भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत आधुनिक और बहुत विकसित होती जा रही है।